थोड़ी देर बाद मंदिर के लश्कर की अगली सफा के सवार दुश्मन को दोनों पहलुओं से घेर कर हाथियों की जब में लाने की गरज से एक निस्फ दायरे की सूरत में फैल गए और हाथियों की कतार उनकी जगह पुर करने के लिए आ गई। अचानक मुसलमानों के दस्तों में हरकत के आसार पैदा हुए और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। तुर्कमान शहसवारों के एक दस्ते ने मंदिर की फौज के बाएं बाजू पर हमला किया और उसके पीछे फौज के बाकी तमाम दस्ते दुश्मन की सबको चीरते हुए आगे निकल गए। आन की आन में रघुनाथ के हाथियों के सामने गर्द के बादलों के सिवा कुछ न था। अबल इसके कि मंदिर की फौज अपनी बदहवासी पर काबू पाती मुसलमानों के दस्ते पलट कर दोबारा हमला कर चुके थे और बाएं बाजू के सिवा बाकी अफरा तफरी के आलम में हाथियों की सफ की तरफ सिमट रहे थे। अरब और अफगान सवारों के चंद दस्तों ने अकब से चक्कर काटकर हमला किया और हाथियों की सफ और बाएं बाजू के सवारों के दरमियान शिगाब डाल दिया। थोड़ी देर बाद मंदिर की फौज में अफरा तफरी फैल चुकी थी। सवार किसी नज्म के मातहत लड़ने की बजाय कई छोटी छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके थे। मुसलमानों के दस्ते एक तरफ से हमला करते और उन्हें तितर बितर करते हुए दूसरी तरफ निकल जाते। मंदिर के कई सवार अफरा तफरी में अपने हाथियों की जद में आकर हलाक हो चुके थे। रघुनाथ अपने बुढ़ापे के बावजूद जुरत और हिम्मत का मुजाहरा कर रहा था। उसने चंद बार हाथियों का रुख फेर कर दुश्मन पर हमला करने की कोशिश की लेकिन उनके तेज रफ्तार घोड़े हर बार उसकी जद से बचकर इधर उधर निकल जाते। एक साथ के बाद जब मंदिर के बाद सरदार अपने अपने दस्तों के साथ मैदान छोड़कर भाग रहे थे तो वो अपने हाथी के हौदज में खड़ा दोनों हाथ बुलंद करके उन्हें धर्म के गैरत का वास्ता दे रहा था। अचानक दुश्मन के किसी सिपाही का तीर उसके सीने में लगा और वो तेवराकर हौदज में गिर पड़ा। ये देखकर हाथियों के दस्ते के एक अफसर ने अपने सिपाहियों को तस्पाई का हुक्म दे दिया। मंदिर की बेशतर फौज पहले ही मैदान से रफूचक्कर हो चुकी थी। हाथियों को मैदान से निकलने की देर थी कि रही सही फौज भी भाग निकली। मुसलमानों ने कोई 3 कोस तक भागते हुए लश्कर का पीछा किया और सैकड़ों सिपाही मौत के घाट उतार दिए। बिलाखिर उनके सालार ने उन्हें रुकने का हुक्म देते हुए कहा, अब हम आगे नहीं जा सकते, हमारे घोड़े जवाब दे चुके हैं, मगरिब की नमाज के बाद हम आसपास की किसी बस्ती में कायम करेंगे। फिर उसने एक नौजवान अफसर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम नमाज पढ़ते ही उनलवाड़ा रवाना हो जाओ और सुल्तान मौजम को इत्तला दो कि उनलवाड़ा से मंदिर तक रास्ता साफ हो चुका है और हम कल सुबह मंदिर की 4 दीवारी से बाहर कुमक का इंतजार करेंगे। मंदिर की बेशतर आबादी जहां मंदिर के अलावा बड़े बड़े सरदारों के महलात थे कदीम शहर की टूटी फूटी 4 दीवारी से बाहर थी। अलग सुबह सुल्तान की फौज के तूफानी दस्तों ने शहर से बाहर कुमक का इंतजार करने की बजाय शहर के गेट चक्कर लगाया और फिर मशरक की तरफ से अंदर दाखिल हो गए। मंदिर के सिपाही और अवाम शहर को खाली छोड़कर मंदिर के गेट जमा हो रहे थे। जब हमला आवरों ने मंदिर का रुख किया तो उन्हें कदम कदम पर शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। उन्होंने पे दर पे हमले किए लेकिन मंदिर के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाबी न हुई। मंदिर के अंदर हजारों इंसान आखिरी दम तक लड़ने का हलफ उठा चुके थे। जब हमला आवरों के दबाव से दरवाजे के मुहाफिजों का एक ग्रोह पीछे हटता तो दूसरा ग्रोह उसकी जगह ले लेता। अहले मंदिर जिस जोश खरोश से मंदिर के दरवाजे पर लड़ रहे थे अगर उसी जोश खरोश से आगे बढ़कर जवाबी हमला करते तो उनके लिए मुट्ठी भर हमला आवरों को शहर से बाहर धकेल देना मुश्किल न था। लेकिन शहर के बरहमन उन्हें यह बता चुके थे कि अगर उन्होंने मंदिर छोड़कर कोई नया महाज बनाया तो देवताओं का अजाब नाजिल होगा। दोपहर से कबल मंदिर के दरवाजे पर लाशों का अंबार लग गया और अहले मंदिर ने मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया लेकिन हमलावरों का एक दस्ता एक जगह से दीवार फान कर अंदर दाखिल हो गया। मंदिर के महाफिजों ने इस दस्ते को घेरे में लेने की कोशिश की लेकिन थोड़ी देर में चंद और दस्ते दीवार फान कर अंदर आ गए और उन्होंने मंदिर के महाफिजों को एक तरफ धकेल कर बाकी फौज के लिए दरवाजा खोल दिया। अहले मंदिर ने चारों तरफ अतराफ से सिमट कर एक जान तोड़ हमला किया लेकिन ऐन उस वक्त जब मंदिर में दाखिल होने वाले मुसलमानों के पांव उखड़ चुके थे सुल्तान की फौज के 10,000 मजीद सिपाही आ पहुंचे और अहले मंदिर की हिम्मत जवाब दे गई। वो सरासिंदगी की हालत में इधर उधर भागने लगे। कोई दीवार फान कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और कोई तालाब में कूद रहा था। मंदिर के पुजारी जब अपनी शिकस्त यकीनी समझते थे जुनूब का दरवाजा खुलवाकर पुराने शहर की तरफ निकल गए। तीसरे पहर सुल्तान महमूद अपनी बेशतर अफवाज को रास्ते में एक मंजिल के फासले पर यलगार करता हुआ मंदिर पहुंचा तो मंदिर के अलावा शहर पर भी मुसलमानों के परचम लहरा रहे थे और तालाब के किनारे मंदिर में नसब किए हुए 1,000 बुतों के टुकड़े इंसान के तराशे हुए खुदाओं की बेसबादी का एतराफ कर रहे थे। मंदिर की दौलत उस खजाने से कहीं ज्यादा थी जो उनलवाड़ा में सुल्तान महमूद के हाथ आया था। नया बाब सती ठाकुर के जख्मी होने का इल्म फौज के चंद अफसरों और उन सिपाहियों के सिवा और किसी को न था जो आखिरी वक्त तक उसके साथ थे। रात के वक्त उसे महल में पहुंचाने के बाद फौज के अफसर आला ने शहर के चंद मौजूदीन और मंदिर के पुरोहित को सूरत हालात से बाखबर किया तो वो ठाकुर को देखने के लिए आए। ठाकुर की हालत नाजुक थी। पुरोहित ने शहर के अकाबिर से कहा, ठाकुर के जख्मी होने की खबर सुनकर शहर के अवाम में बददिली फैल जाएगी, इसलिए हमें यह मशहूर कर देना चाहिए कि ठाकुर फौज की शिकस्त के बाद मंदिर की हिफाजत के लिए राजा भीमदेव से मदद लेने कंठकोट गए हैं और बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इत्तेफाक से उमलवाला का शाही तबीब मंदिर में मौजूद था। ठाकुर के नौकर उसे ठाकुर की मरहमपट्टी के लिए ले आए। अगले दिन जब सुल्तान के हरावल दस्ते मंदिर पहुंच गए तो ठाकुर की फौज के अफसर ने महल को गैर महसूस समझते हुए ठाकुर को एक नौकर के घर पहुंचा दिया और एक सवार को जयकृष्ण की तरफ यह पैगाम देकर रवाना कर दिया कि ठाकुर जख्मी हो गए हैं, इसलिए आप रास्ते में रुक जाएं और दूसरी इत्तला का इंतजार करें। मंदिर फतेह करने के बाद सुल्तान ने रघुनाथ के महल में कयाम किया, लेकिन उसे यह मालूम न हो सका कि इस महल का मालिक पास ही एक तंग तारीक कोठरी में पड़ा कराह रहा है। तीसरे रोज सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ कूच किया। उसके बाद ठाकुर को दोबारा महल में लाया गया। मनोराज के इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई इफाका नहीं हुआ था। महल में पहुंचते ही उसने फटी फटी निगाहों से अपने तीमारदारों को देखा और नहीं आवाज में पूछा, निर्मला नहीं आई? मनोराज ने जवाब दिया, वो आपके जख्मी होने की इत्तला मिलने पर रास्ते में रुक गए थे। आज सुबह दुश्मन के यहाँ से कूच करते ही उनकी तरफ एक सवार भेज दिया गया है। मुझे यकीन है कि वो कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन ठाकुर रघुनाथ ज्यादा देर उनकी राह न देख सका। अगले दिन तुल्य आफ्ताब से थोड़ी देर बाद जब निर्मला अपने बाप के हमरा वापस पहुंची तो उसका शौहर सिर्फ चंद सानिये कबल आखिरी बार उसका नाम लेने के बाद दम तोड़ चुका था। निर्मला ठाकुर की लाश के पास बैठी थी और शहर की उम्र रसीदा औरतें उसे एक हिंदू बीवी का आखिरी फर्ज पूरा करने की तैयारी का मशवरा दे रही थी। मंदिर के आवाम जो मुसलमानों के कूच के बाद किसी हद तक अपने होशो हवास पर काबू पा चुके थे, ठाकुर के महल से बाहर जमा हो रहे थे। ठाकुर की मौत उनके नजदीक कौम के एक बहुत बड़े हीरो की मौत थी। जब किशन निर्मला को शहर की खवातीन के हुजूम में छोड़कर मेहमान खाने में दाखिल हुआ तो वहां ठाकुर के रिश्तेदार शहर के उमरा और बरहमन मौजूद थे। ये लोग ठाकुर की मौत पर अफसोस कर रहे थे। इतने में शहर का पुरोहित जो मंदिर की फतेह के बाद कहीं गायब हो गया था, मंदिर के चंद पुजारियों के हमरा वहां आ पहुंचा। उसने जयकिशन और ठाकुर के रिश्तेदारों से रस्मी हमदर्दी का इजहार करने के बाद कहा, मुझे इस बात का अफसोस है कि ठाकुर रघुनाथ जी अपनी मौत से पहले हमारे धर्म के दुश्मनों का अंजाम नहीं देख सके। देवताओं ने मुसलमानों को तबाही के रास्ते की तरफ बुलाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अब इत्मीनान से बैठे रहें। जो लोग लड़ने के काबिल है उनका यह फर्ज है कि फौरन सोमनाथ रवाना हो जाएं। अब दुश्मन दोबारा यहां नहीं आएगा, उससे इंतकाम लेने की सिर्फ यही सूरत है कि हम उसका पीछा करें। राजा भीमदेव ने हमारे देवताओं को नाराज किया है, अब उसके लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं होगी। अगर वो बुजदिली का सबूत न देता तो हम इस तबाही का सामना न करते। एक ब्राह्मण ने आगे बढ़कर पुरोहित के कान में कुछ कहा और उसने जयकृष्ण की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, सरदार जयकृष्ण, हमारी राय यह है कि ठाकुर जी की आखिरी रस्म पूरी करने में देर न की जाए। मैं यहां से फारिग होकर फौरन सोमनाथ पहुंचना चाहता हूं। आप अंदर जाकर निर्मला देवी को तैयार करें। जयकृष्ण के लिए यह समझना मुश्किल न था कि निर्मला को किस मकसद के लिए तैयार होने की जरूरत है। उसने इंतहाई बेबसी की हालत में इधर उधर देखा, फिर कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि हमें ठाकुर जी के तमाम रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच जाने का इंतजार करना चाहिए। मुझे यकीन है कि कल तक महाराजा भीमदेव भी यहाँ पहुंच जाएगा। पुरोहित ने जवाब दिया, भीमदेव उन्नलवाड़ा से भागने के बाद हमारा राजा नहीं रहा, अब वो ठाकुर रघुनाथ के रिश्तेदार की हैसियत से भी हमारी किसी रस्म में शरीक नहीं हो सकता। जयकृष्ण ने कहा, हमें कम अज कम उनके बाकी रिश्तेदारों का इंतजार करना चाहिए। जो लोग भीमदेव के साथ कंठकोट भाग गए हैं वो अब ठाकुर की अर्थी को हाथ लगाने का हक नहीं रखते। ठाकुर जी के रिश्तेदार वो हैं जो आखिरी दम तक उनके साथ थे। आप बाहर निकल कर देखें, शहर के तमाम बच्चे और बूढ़े महल के दरवाजे पर जमा हो रहे हैं। इनमें सैकड़ों ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो दुश्मन का पीछा करने से पहले ठाकुर जी की आखिरी रस्म पूरी करते जाएं। जयकृष्ण ने करबंगेज आवाज में कहा, लेकिन ठाकुर जी की यह ख्वाहिश न थी कि निर्मला को उनके साथ सती किया जाए। वो इस रस्म को काबिल नफरत समझते थे और यही वजह थी कि जब उन्होंने अपने लिए खतरा महसूस किया तो निर्मला को बाहर भेज दिया था। हाजरीन की निगाहें जयकृष्ण के चेहरे पर मरकूज हो गईं। ठाकुर के एक रिश्तेदार ने कहा, यह गलत है, ठाकुर जी मौत से पहले अपनी बीवी को घर में देखना चाहते थे। पुरोहित ने कहा, मैं हैरान हूं कि कन्नौज के एक राजपूत सरदार को अपनी बेटी का सती होना पसंद नहीं, और वो भी ठाकुर रघुनाथ जैसे शौहर के साथ। ठाकुर के मामूजाद भाई अर्जुन देव ने कदरे जोश में आकर कहा, महाराज, कन्नौज के राजपूतों का खून सफेद हो चुका है, लेकिन हमें इस बात के लिए सरदार जयकृष्ण का मशवरा लेने की जरूरत नहीं। शहर के संत और अकाबर ने इस बहस में हिस्सा लिया और जयकृष्ण को महसूस होने लगा कि उसका इल्तिजाज या इल्तिजाएं बेसूद हैं। अब निर्मला को बचाने की सिर्फ यही सूरत थी कि उसे अपने साथ लेकर कहीं भाग जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक अपना लहजा बदलते हुए कहा, आप क्यों बिगड़ते हैं? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इस रस्म के खिलाफ हूँ। मैंने सिर्फ ठाकुर जी की राय जाहिर की थी। ठाकुर रघुनाथ की बीवी के लिए सती होने के सिवा कोई चारा नहीं, और मेरी बेटी की रगों में भी तो एक राजपूत का खून है। अगर मैं उसे मना करूं तो भी वो ठाकुर जी की चिता में कूद जाएगी। हाजिर ने इत्मीनान का सांस लिया और पुरोहित ने कहा, मुझे आपसे यही तवक्को थी। میرے خیال میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں سورج غروب ہونے سے پہلے فارغ ہو جانا چاہیے. ہماری طرف سے دیر نہیں ہوگی مہاراج, ٹھاکر کے ایک رشتے دار نے کہا. پروہت نے جے کرشن کی طرف متوجہ ہو کر کہا, ٹھاکر جی نے جو خزانہ آپ کے سپرد کیا تھا وہ کہاں ہے؟ جے کرشن نے جواب دیا, مہاراج میں نے وہ خزانہ یہاں واپس لانے کی بجائے سپاہیوں کے ایک دستے کی حفاظت میں کنٹ کوٹ بھیج دیا تھا, لیکن نرملا کے تمام زیورات اس کے پاس ہیں, میرے پاس بھی کچھ سونا چاندی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس موقع پر دان کر دیا جائے. نرملا کی خواہش ہے کہ ٹھاکر جی کی تمام جائیداد مندر کو دے دی جائے. برملا کو چہرے مسرتوں سے چمک اٹھے, لیکن ٹھاکر کے رشتے دار خون کو گھونٹ پی کر رہ گئے. روہت نے کہا, بہت اچھا سردار جے کرشن جی, اب آپ تیاری کریں. جے کرشن اٹھ کر چل دیا. تھوڑی دیر بعد نرملا کی ایک خادمہ نے اس کے کان میں کہا, آپ کے پتا جی دوسرے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نرملا اٹھ کر خادمہ کے ساتھ چل دی. جے کرشن محل کے دوسرے سرے پر ایک کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا. نرملا اس کے قریب پہنچ کر ایک ثانیے کے لیے رکی اور پھر بے اختیار سسکیاں لیتی ہوئی اپنے باپ سے لپٹ گئی. جے کرشن نے خادمہ سے کہا, تم جلدی سے اپنے پرانے کپڑوں کا ایک جوڑا لے آؤ, لیکن کسی کو معلوم نہ ہو. خادمہ چلی گئی اور جے کرشن نرملا کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا. نرملا, کاش تم میرے مشورے پر عمل کرتی اور ہم یہاں نہ آتے, لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مر جائے گا اور میں اس کے ساتھ ستی ہو جاؤں گی. پتا جی مجھے موت کا خوف نہیں, لیکن ٹھاکر کی چتا میں کود کر جان دینا میری برداشت سے باہر ہے. جے کرشن نے کہا, نرملا اب تمہاری جان بچانے کی ایک ہی صورت ہے, میری بات غور سے سنو. تمہاری خادمہ نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے, ابھی وہ تمہارے لیے اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا لے کر آ جائے گی. لباس تبدیل کرنے کے بعد تم محل کے پچھلے دروازے سے اپنے گھر پہنچ جاؤ. میں نے گوبند رام کو گھوڑے تیار کرنے کے لیے بھیج دیا ہے, وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. تم فوراً دروازے کی طرف بھاگ جاؤ, مسلمانوں کی فوج اس طرف گئی ہے, اس لیے اگر یہاں سے کسی نے تمہارا پیچھا کیا تو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں کرے گا. مجھے یقین ہے کہ تمہارے حالات سننے کے بعد مسلمان فوراً تمہیں اپنی پناہ میں لے لیں گے. میں تمہیں بھاگنے کا موقع دینے کے لیے کچھ دیر یہی رہوں گا, پھر شاید پہلی منزل ہی میں تمہارے ساتھ آ ملوں. نرملا نے کہا, نہیں نہیں پتا جی, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کر. جے کرشن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا, مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں, جب تک محل میں رہوں گا تمہارے بارے میں کسی کو تشویش نہیں ہوگی. میں دیکھ آیا ہوں, محل کا پچھلا دروازہ کھلا ہے اور آج وہاں کوئی پہرا بھی نہیں ہے. اس گہما گہمی میں تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں دے گا, سینکڑوں عورتیں محل میں گھوم رہی ہیں, تمہیں صرف یہ احتیاط کرنی ہے کہ کوئی غور سے تمہارا چہرہ نہ دیکھے. لیکن پتا جی, جے کرشن نے آجز سا ہو کر کہا, بھگوان کے لیے بحث نہ کرو, تم جانتی ہو کہ تمہارے بغیر میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں. میں تم سے پہلے چتا میں کود جاؤں گا, لیکن میرا کہا ماننے سے تم میری اور اپنی دونوں کی جان بچا سکو گی. بھاگنے کی کوشش خطرناک ضرور ہے, لیکن چتا میں چلنے سے زیادہ خطرناک نہیں. اس میں تو بچ نکلنے کی امید ہے, لیکن چتا کے شعلوں سے کون بچا سکتا ہے؟ نرملا, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم زندہ رہو گی. بھگوان, جس نے رامناتھ جیسے لوگوں کی پکار سن کر مسلمانوں کو سومناتھ کا راستہ دکھایا ہے, تمہاری مدد ضرور کرے گا. ہمت سے کام لو بیٹی. خادمہ اپنی بغل میں کپڑوں کے گٹھے دبائے کمرے میں داخل ہوئی. نرملا نے کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے اور کہنے لگی, پتا جی کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں؟ جے کرشن نے تل ملا کر جواب دیا, مجھے کوئی خطرہ نہیں, بھگوان کے لیے تم جلدی کرو. نرملا عقب کے کمرے میں چلی گئی اور جے کرشن نے خادمہ سے مخاطب ہو کر کہا, تم نے مجھ سے آج جو نیکی کی ہے اس کا صلہ شاید میں عمر بھر نہ دے سکوں. اب تمہیں نرملا کو محل کے پچھلے دروازے سے باہر نکالنا ہے. خادمہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا, نرملا کے لیے میں اپنی جان تک قربان کر سکتی ہوں. جے کرشن نے کہا, نرملا کو دروازے سے باہر نکال کر مجھے اطلاع ضرور دینا. اس کے بعد تم اس کمرے میں جاؤ جہاں ٹھاکر کی لاش پڑی ہوئی ہے. وہاں جو عورتیں جمع ہیں ان کو نرملا کے بارے میں تشویش ہوگی, تم انہیں باتوں میں لگائے رکھو. نرملا لباس تبدیل کرنے کے بعد عقب کے کمرے سے نمودار ہوئی اور جے کرشن نے اسے کوئی اور بات کرنے کا موقع دینے کی بجائے برآمدے کی طرف دھکیل دیا. خادمہ اس کے ہمراہ چل پڑی اور جے کرشن نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی. نرملا کو روانہ کرنے کے بعد جے کرشن انتہائی اضطراب کی حالت میں دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا. جب بھی برآمدے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی, اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی. وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر برآمدے میں جھانکتا, لیکن نرملا کی خادمہ کی بجائے کسی اور کو دیکھ کر دوبارہ دروازہ بند کر لیتا. ہر لحظہ اس کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا. خادمہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دروازے پر نرملا کو کسی نے پہچان لیا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خادمہ مجھے اطلاع دینا ضروری نہ سمجھ کر سیدھا ٹھاکر کے کمرے میں چلی گئی ہو؟ اس کے پاس ان سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا. کمرے کے اندر ایک ایک لمحہ اسے مہینوں سے زیادہ طویل معلوم ہوتا تھا. اس کا دم گھٹا جا رہا تھا. وہ دروازے سے ہٹ کر کمرے میں ٹہلنے لگا. اتنے میں برآمدے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ پھر ایک دفعہ دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا. کسی نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا, دروازہ کھولیے. جے کرشن کا دل بیٹھ گیا اور اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا, کون ہے؟ باہر سے کسی نے تحکمانہ لہجے میں کہا, دروازہ کھولیے. یہ ٹھاکر رگوناتھ کے ماموزاد بھائی سردار ارجن دیو کی آواز تھی. جے کرشن نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا, آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ آپ ذرا باہر آئیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نرملا دیوی کو آپ نے کہاں بھیجا تھا. جے کرشن چند ثانیے مبہوت کھڑا رہا, پھر اس نے لرستے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا. बरामदे में सरदार अर्जुन देव के अलावा महल के 5 नौकर और शहर के 2 बरहमन खड़े थे। उनके चेहरे गवाही दे रहे थे कि निर्मला महल से भाग निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। जय किशन ने अर्जुन देव का हाथ पकड़ लिया और शराब पर इल्तिजा बनकर कहा, सरदार अर्जुन देव मुझ पर रहम करो, निर्मला मेरी इकलौती बेटी है, वो मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अर्जुन देव ने कहा, तो वो आपकी मर्जी से भागना चाहती थी? हाँ, वो कहाँ है? अर्जुन देव ने जवाब दिया, उसका जवाब तुम्हें शहर की पंचायत के सामने दिया जाएगा, चलो नीचे। जयकिशन ने कहा, भगवान के लिए मुझे बताओ वो है कहाँ? वो नीचे है, और जब तक सती की रस्म पूरी नहीं हो जाती प्रोहित जी महाराज उसकी हिफाजत करेंगे। जयकिशन ने बेख्तियार उसके पांव पर गिरते हुए कहा, अर्जुन देव उसकी जान बचाओ और उसके इवज मुझे ठाकुर की चिता में डाल दो। अर्जुन देव ने कहा, मुझे एक राजपूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शर्म महसूस होती है। जयकिशन, होश में आओ, दुनिया क्या कहेगी? जयकिशन ने कहा, मैं अपनी बेटी की जान बचाना चाहता हूँ, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। अर्जुन देव, मेरी मदद करो, मैं उसे लेकर कन्नौज चला जाऊंगा, तुम मेरी जायदाद ले सकते हो लेकिन निर्मला को छोड़ दो। अर्जुन देव ने जवाब दिया, राजपूत अपनी गैरत का सौदा नहीं करते, तुम्हें ये बातें उस दिन सोचनी चाहिए थी जब तुमने ठाकुर से अपनी बेटी की शादी रचाई थी। जयकिशन उठा और दोनों हाथों से अर्जुन देव का बाजू झिझोड़ते हुए चिल्लाया, तुम निर्मला को उसकी मर्जी के खिलाफ ठाकुर की चिता में नहीं डाल सकते, ये पाप है, मैं ऐसा पाप नहीं होने दूंगा। तुम पागल हो गए हो, अर्जुन देव ने उसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा। जयकिशन भागता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां ठाकुर की लाश पड़ी हुई थी। निर्मला, निर्मला, उसने बुलंद आवाज में कहा। औरतें घबरा कर इधर उधर से मट गईं। निर्मला को वहां न पाकर जयकिशन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। नीचे एक वसी दालान से बाहर शहर के लोग जमा थे। जयकिशन उन्हें इधर उधर हटाकर अंदर दाखिल हुआ। मंदिर का पुरोहित चंद ब्रह्मनों और शहर के मौजूदीन के साथ वहां बैठा हुआ था और निर्मला इंतहाई बेकसी की हालत में उसके सामने खड़ी थी। निर्मला, निर्मला, जयकिशन चिल्लाया और पिताजी, पिताजी कहती हुई उससे लिपट गई। निर्मला मेरी बेटी, मेरी जिंदगी में तुम्हें सती नहीं होने दूंगा, ये लोग मेरी गलती की सजा तुम्हें नहीं दे सकते, तुम उनसे कह दो कि तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ ठाकुर से शादी की थी। और निर्मला फूट फूट कर रो रही थी। जयकिशन पुरोहित की तरफ मुतवज्जे हुआ, तुम लोग मेरी बेटी को इसलिए सती करना चाहते हो कि उसका जेवर तुम्हारे हाथ आएगा, लेकिन तुम उसे चिता में डाले बगैर भी सब कुछ ले सकते हो, मैं अपनी जायदाद भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, निर्मला ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। सरदार अर्जुन देव ने कहा, यह पागल हो गया, इसे ले जाओ। चंद नौकरों ने आगे बढ़कर जयकिशन को बाजू से पकड़ लिया। ठाकुर के एक और रिश्तेदार ने निर्मला को खींच कर उसे अलहदा किया और नौकर जयकिशन को बाहर ले गए। वो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, तुम जालिम हो, भेड़िए हो, लेकिन याद रखो मुसलमान फिर यहाँ आएंगे और तुमसे निर्मला की मौत का बदला लेंगे। पुरोहित और शहर के चंद मौजूदीन की राय यह थी कि जयकिशन को कैदखाने में भेज दिया जाए, लेकिन अर्जुन देव ने इस राय की मुखालिफत करते हुए कहा, इसमें शक नहीं कि जयकिशन का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ठाकुर जी का कसूर है। जब तक सती की रस्म पूरी नहीं होती हम उसे महल के किसी कमरे में बंद रखेंगे। मुझे यकीन है कि एक दो दिन में उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। अब हमें ठाकुर की अर्थी उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। शहर के अकाबर ने अर्जुन देव की तजवीज से इत्तफाक किया और जयकिशन को महल की तीसरी मंजिल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। महल के एक और कमरे में निर्मला को कीमती लिबास और जेवरात से आरास्ता किया जा रहा था। एक उम्र रसीदा औरत उसे समझा रही थी, बेटी हिम्मत से काम लो, तुम्हें इस बात पर फख्र करना चाहिए कि तुम ठाकुर रघुनाथ जैसे देशभक्त के साथ सती हो रही हो, मंदिर की औरतें तुम्हारे किस्मत पर रश किया करेंगी, अपने शोहर की लाज रखो। और निर्मला सख्ते के आलम में बैठी यह सब बातें सुन रही थी। उसकी निगाहों के सामने एक भयानक खला के सिवा कुछ न था। महल की तीसरी मंजिल पर जयकिशन अपने कमरे का दरवाजा तोड़ने की नाकाम कोशिशों के बाद दीवारों से टक्करें मार रहा था। कमरे की एक खिड़की सहन की तरफ खुलती थी, लेकिन खिड़की के रास्ते जिंदा बाहर निकलने की कोई सूरत न थी। जयकिशन खिड़की से बाहर झांकते हुए बुलंद आवाज में चिल्लाया, भगवान के लिए मुझे बाहर निकलने दो, मैं आखिरी वक्त अपनी बेटी के पास रहना चाहता हूँ। लेकिन उसकी चीख पुकार हुजूम के शोर में गुम होकर रह गई। दोपहर के वक्त नाकूस की सदाओं के साथ महल से ठाकुर रघुनाथ की अर्थी उठाई गई। आगे आगे ब्राह्मणों की एक टोली भजन गा रही थी। पीछे निर्मला एक दुल्हन की तरह नए लिबास और कीमती जेवरात से आरास्ता एक खुली पालकी में बैठी हुई थी। निर्मला, निर्मला, जयकिशन पूरी कुवत से चिल्लाया, लेकिन निर्मला के कानों तक उसकी आवाज न पहुंच सकी। फिर चंद मर्दों और औरतों की चीखों के दरमियान सहन में किसी भारी शय के गिरने की आवाज सुनाई दी और आन की आन में सहन के अंदर और बाहर एक कोहराम मच गया। निर्मला का बाप खिड़की से कूद कर जान दे चुका था। जुलूस रुक गया। निर्मला पालकी से उतरकर भागती हुई आई जयकिशन की लाश से लिपट कर हिचकियां लेने लगी। फिर वो शहर के लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर चिल्लाई, भगवान के लिए मेरे पिता की अर्थी भी हमारे साथ ही ले चलो। तीसरे पहर ठाकुर रघुनाथ के साथ जयकिशन की अर्थी भी शमशान भूमि का रुख कर रही थी। निर्मला की दरखास्त पर जयकिशन की चिता को पहले आग लगा दी गई। जब शोले बुलंद हुए तो निर्मला ने भागकर चिता में कूदने की कोशिश की। ارجندے کے لیے اس کی حرکت غیر متوقع نہ تھی. اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا. نرملا چلائی، مجھے چھوڑ دو، میں ٹھاکر کی بجائے اپنے پتا کی چتا میں ستی ہونا چاہتی ہوں. لیکن لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ٹھاکر کی لاش کے قریب چتا میں بٹھا دیا. ٹھاکر کے نوکروں اور شداروں نے خشک لکڑیوں کے امبار پر گھی کے مٹکے اڈیل دیے. اس کے بعد وہ اود، امبر اور دوسری خوشبودار چیزیں لا کر چتا پر ڈھیر کرنے لگے. چند برہمن مشلیں لیے کھڑے تھے اور مندر کا پروہت سنسکرت میں کچھ اشلوک پڑھ رہا تھا. نرملا کی نگاہیں اپنے باپ کی چتا پر مرکوز تھیں. وہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی، پتا جی آپ کا مر جانا ہی بہتر تھا. تھوڑی دیر بعد آپ کے شعلے مجھے بھی اپنی آغوش میں لے لیں گے. اگر آپ زندہ ہوتے تو میری چیخیں برداشت نہ کر سکتے. آپ کہتے تھے کہ میں زندہ رہوں گی اور اس وقت میں موت سے کس قدر ڈرتی تھی، لیکن اب مجھے موت کا خوف نہیں رہا. اب میری زندگی کی کسی کو ضرورت نہیں رہی. اب میری چیخیں سن کر کسی کو دکھ نہیں ہوگا. پھر اسے رنبیر کا خیال آیا اور موت کا چہرہ بھیانک دکھائی دینے لگا. وہ رنبیر کی خیالی تصویر سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، کاش تم اس وقت یہاں ہوتے اور جب آگ کے شعلے میرے قریب پہنچ جاتے تو میں بلند آواز سے تمہارا نام پکارتی. میں کہتی، رنبیر، قنوج چھوڑنے کے بعد میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب میں تمہاری یاد سے غافل رہی. میں ہر وقت یہی سوچا کرتی تھی کہ تم کسی دن آؤ گے. تم آئے لیکن تمہاری نگاہیں میرے دل کی گہرائیوں تک نہ پہنچ سکی. میں ہمیشہ تمہاری تھی لیکن تم نے ہمیشہ مجھے غیر سمجھا. رنبیر، رنبیر تم کہاں ہو؟ پروہت کے ساتھ برہمنوں کی ٹولی بھجن گانے لگی. ان کی آوازیں بلند ہوتی گئی. پروہت کے اشارے سے ایک نوجوان مشل اٹھا کر چتا کی طرف بڑھا.
ہوتی ہے اور مایا کی یہ شرف بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آغوش میں آپ کا سر رکھا ہے اور اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، چار سیاہ زوال کا وقت ہے، تمام ازواج مطہرات موجود ہیں. جب یہ خبر پھیل گئی تو بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملہ آیا، جن میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خدا کی قسم اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر کی موت واقع ہو گئی ہے تو میں اس تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا. حضور تشریف لے گئے ہیں، آپ کی روح گئی ہے، تشریف لے گئی ہے، واپس آئے گی آپ کی روح. میں سننا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور امت میں ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں، لیکن عشق اور محبت جو ہے ہائے واگے لگ